दिन भर 11 अप्रैल सोमवार, मैं हूं संदीप सोनी। असम में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न। पश्चिम बंगाल में भी डाले गए वोट।
15 साल तो हमने देख लिए, क्यों ना एक बार चेंज होके देख सकते। आशा करते हैं कि जो नया सरकार आएगा तो वो करेंगे, मतलब हर व्यक्ति आज मतलब एक बदलाव चाहते हैं।
केरल के मंदिर हादसे के बाद पारावूर शहर में मातम का माहौल।
മോനാണിതെല്ലാം കണ്ടത്. അവ അമ്മാമ്മയൊക്കെ അടുത്തൊരു കട ഇട്ടേക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ മോന്റെ അമ്മാമ്മ എന്റെ അമ്മ അടുത്ത് വേറെ ഒരു കഴിവ്.
അസം കെ തിൻസുഖിയ ജില്ല മേ പോലീസ് കി ഗോലിയോ സേ ബിജ്ലി കാ താർ ഗിർനെ സേ കൈ ലോഗ് ഹതാഹത്ത് ഹോംഗി. ആപ്കി ചിട്ടിയാ ഭീ ലേക്കിൻ പെഹ്ലെ വിശ്വ സമാചാർ.
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। असम में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 61 सीटों पर वोट डाले गए। इसी के साथ असम में आखिरी दौर का मतदान आज खत्म हो गया। असम में चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक 82% वोट डाले गए हैं। दिसपुर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी वोट डाला। असम के बरपेटा में सीआरपीएफ और स्थानीय लोगों के बीच पत्थरबाजी और लाठीचार्ज में कुछ लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। चुनाव आयोग ने मामले की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 31 वोटों पर आज मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई है। हालांकि कुछ जगहों पर राजनीतिक पार्टियों के बीच कुछ झड़पें हुई, लेकिन उन पर काबू पा लिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 79% वोटिंग आज शाम 5 बजे तक हो चुकी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के उजगरोड मेडिकल कॉलेज में 3 भारतीय छात्रों पर हमला किया गया। मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 2 छात्रों की मौत हो गई है और एक घायल हो गया है। रविवार सुबह 3 यूक्रेनी नागरिकों ने भारतीय छात्रों पर हमला किया था। स्थानीय पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक महिला सहित 3 लोगों को यूक्रेन और स्लोवाकिया की सीमा के पास से हिरासत में लिया गया है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि संभावना है कि शराब पीने के बाद नशे में मारपीट के दौरान ये हत्याएं की गई हैं। इस हमले में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले प्रणव शांडिल्य और गाजियाबाद के अंकुर सिंह की मौत हो गई है। इस हमले में आगरा के इंद्रजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यमन में कल रात से लागू हुए युद्धविराम के बावजूद कई जगहों पर लड़ाई की खबरें आ रही हैं। करीब 1 साल से चल रही लड़ाई को रोकने के लिए युद्धविराम का ऐलान किया गया है, लेकिन तियाज, मरीब और राजधानी सना में इसके उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। अगले हफ्ते कुवैत में शांति वार्ता शुरू होने जा रही है। इस बीच स्थानीय पत्रकार मोहम्मद अल कादी ने वहाँ के हालात हमें बताए।
Minutes after the ceasefire was announced, we have heard, we started to hear clashes in different parts of the city.
उनकी घोषणा के कुछ ही मिनटों के बाद हमने संघर्ष की आवाजें सुनी। हूथी और साल्हे के गुटों की तरफ से लगातार बमबारी जा रही थी। मैं सुबह अस्पताल भी गया था। सरकार समर्थित सेना का एक सैनिक मारा गया है और कुछ आम लोग भी मारे गए हैं। बच्चों समेत 10 और लोग घायल हुए हैं। ये थे मोहम्मद अल कादी के शब्द। यमन में सरकार समर्थित सेना और हूथी विद्रोहियों के बीच लड़ाई में अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित मराठवाड़ा के लातूर जिले के लोगों को पीने का पानी पहुंचाने के लिए सांगली जिले में मिराज से पानी भरकर एक ट्रेन रवाना हो चुकी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी से दिन की तीसरी सभा दिन भर में सभी श्रोताओं का अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं लाइव। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले गए हैं। असम में मतदान का आज दूसरा और आखिरी चरण था। वहीं पश्चिम बंगाल में अभी कई दौर होना बाकी हैं। इन दोनों राज्यों में आज के मतदान पर करेंगे बात, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं केरल से, जहां पुतिंगल देवी मंदिर में आग लगने के 1.5 दिन बाद कोल्लम का पारावूर शहर मातम में डूबा हुआ है। लोग अस्पताल और पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अब उनकी हिम्मत जवाब दे गई है और वो अपने घरों को लौट आए हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से मिलकर बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने पारावूर से ये रिपोर्ट हमें भेजी
है। वो बार बार दोनों बच्चों को देखती हैं, दिलासा देती हैं, फिर खुद ही रो पड़ती हैं।
12 साल के किशोर और 14 साल की कृष्णा की मासी उनके पथराए चेहरों को देख अपना संतुलन खो देती हैं। रविवार रात ये दोनों बच्चे पुतिंगल देवी मंदिर के पीछे अपने माँ बाप के साथ चाय के ठेले पर काम कर रहे थे जब वहाँ आग लग गई।
മോനാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടത്. അവ അമ്മാമ്മയൊക്കെ അടുത്തൊരു കട ഇട്ടേക്കായിരുന്നു. മോന്റെ അമ്മാമ്മ
സുചിത ബതാതി ഹൈ കി കിഷോർ ഓർ കൃഷ്ണ 20 കദം കി ദൂരി പർ അപ്നേ നാനാ സേ പ്ലാസ്റ്റിക് കി ഗിലാസ് ലേനേ ഗയേ ഥേ ഓർ ബച്ച് ഗയേ. ദൗഡ് കർ വാപസ് ഠേലേ തക് പഹുഞ്ചേ തോ മാ ബാപ് കേ ശവ് മിലേ. തഭീ സേ ഐസേ ഖാമോഷ് ഹൈ. അഫരാ തഫരി മേ നാനാ ഓർ ബച്ചേ തോ ബേഹോഷ് ഹോ ഗയേ. आसपास वालों ने ही इनके पिता बंसी और माँ बेबी गिरिजा को ऑटो में अस्पताल पहुँचाया। वहाँ मासी सुचिता ने ही पहचान की। कहती हैं गरीब परिवार के ये दोनों बच्चे खेल में बहुत होशियार हैं। कृष्णा तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फुटबॉल टीम से खेलती भी है, पर अब इनके भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। उदय कुमार के घर में अजीब सी बेचैनी है, मानो किसी को यकीन ना हो रहा हो कि हर साल मंदिर में आतिशबाजी का रोमांच लेने वाला उदय उन्हीं पटाखों की भेंट कैसे चढ़ गया। घायल तो उदय और उनकी पत्नी दोनों हुए, वो मिल भी गईं, पर उदय लापता थे। रविवार को अलग अलग अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद आखिर सोमवार तड़के पुलिस थाने में उनका फोटो मिला। उदय की बहन अनीता ने बताया कि भाई के पेट पर अपेंडिक्स के ऑपरेशन के निशान से ही वो उन्हें पहचान पाईं। आज स्थानीय रीतियों के मुताबिक घर के पिछवाड़े में 5 साल के बेटे ने अपने पिता को आग दी।
जस्ट अबाउट 3 o'clock, 3:25।
रविवार तड़के धमाके की आवाज़ सुन अधेड़ उम्र के हो चुके प्रफास अपने छोटे भाई की सलामती मालूम करने आनन फानन में मंदिर पहुंच गए।
आफ्टर एक्सप्लोशन आई जस्ट केम देयर एंड सी द डेड बॉडीज आल्सो।
प्रफास बताते हैं कि चारों तरफ शव बिखरे थे, बत्ती चली गई थी, कुछ भी देख पाना मुश्किल था। चारों ओर बस धुआं और जलने की बदबू थी। ऐसे में भाई कैसे मिलता? पर तब प्रफास को ये नहीं मालूम था कि उनका भाई काशीनाथ दरअसल मंदिर के उस हिस्से के नीचे दब गया है जो पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। वो काशीनाथ को अस्पतालों में ढूंढते रहे। आखिर शाम को एक पुलिस वाले ने बताया कि काशीनाथ की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। अब घर के अंदर मातम है और घर के बाहर स्थानीय कांग्रेस नेता काशीनाथ को श्रद्धांजलि देता एक पोस्टर। दिव्या आर्य, BBC, पारावूर, कोल्लम।
इस बीच आतिशबाजी और उसकी वजह से हुए धमाकों की जांच कहां तक पहुंची है, कोल्लम में BBC संवाददाता रविंदर बाबा मौजूद हैं। इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, टेलीफोन लाइन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। रविंदर, ये बताएं कि आतिशबाजी और विस्फोट के इस पूरे मामले में पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार कर पाई है या नहीं?
आज दोपहर तक कोई खास गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ का जो काम है वो शुरू कर दिया है। पिछले कुछ घंटों में उन्होंने कई लोगों को अपने यहाँ पर बुलाया और पूछताछ जारी है। और एक हमारे सोर्स है जो कि ACP लेवल के अधिकारी हैं, जिनसे हमारी बात भी हुई और उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि जो मंदिर है कि उनके बोर्ड के भी कुछ लोगों से उनकी बातचीत हो रही है। इसी बीच दिन भर आज जो वहां पर जहां पर ये हादसा हुआ था वहां लगातार अधिकारियों की इंजीनियरों की जो है के दौरे हो रहे थे और उसमें सबसे खास दौरा उनका था चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव सुदर्शन कमल जी वहां पर पहुंचे थे अपनी पूरी टीम के साथ, साथ में उनके साथ यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस भी थे उनके प्रकाश जी। और उन लोगों ने उस जगह पर जब दौरा किया तो ये सुदर्शन कमल जी ने कहा जब से बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि कई जो कानूनों का उल्लंघन हुआ था वहाँ पर, जितने भी वहाँ पर ये एक्सप्लोसिव जो आतिशबाजियाँ के जो पटाखे दिए गए थे उनमें जो केमिकल की तादाद या इस तरह के जो स्टिकर्स लगे होते हैं जो कि एक तरह से सावधान करते हैं, चेतावनी देते हैं, वो हटा दिए गए थे। साथ ही वो दौरा कर रहे थे तो एक कोना है उसी मंदिर के मैदान में जिस जगह पर ये हादसा हुआ वहाँ भी बोरे में कुछ इस तरह के विस्फोटक पड़े हुए थे और वो कोई इस तरह जैसे एक रस्सी से बंधे हुए जैसे बारूद को रस्सी से बांधे हुए गोले, इस तरह की चीजें वहां से वो उठा के लेके गए हैं, सैंपल्स लेके गए हैं जिनकी जांच की जाएगी, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें कुछ इस तरह के रसायन हैं जो काफी ज्यादा हानिकारक हैं, काफी तेज थे, इसी वजह से जो ये हादसा हुआ है। क्योंकि जब वो चिंगारी उस पटाखों के जहाँ पर ये सारे पटाखे पड़े थे वहां पहुंची, और एक पटाखा जो वहां पहुंचा उसके बाद ये सब एक्सप्लोजन हुआ, इसकी वजह ये है कि कुछ भारी संख्या में वहां रखा हुआ था ये सारे पटाखे। इस बीच हमारी एसडीएम साहब से भी बात हुई जो वहां दौरे पे आए थे, और उन्होंने बताया कि हालांकि इस मंदिर के जो बोर्ड है उसको परमिशन नहीं दी गई थी, उनको अनुमति नहीं थी ये करने की, उसके बावजूद उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। और उनका कहना है कि कार्यक्रम से पहले तक, एसडीएम साहब ने खुद अपने बयान में कहा है कि इससे पहले तक ये पटाखे किसी अलग अलग घरों में इसी इलाके में छुपाए गए थे। तो इस पर हमने उनसे दोबारा सवाल किया कि अगर ऐसी बात थी तो अधिकारीगण कहाँ थे। तो इस पर उन्होंने थोड़ा गोलमोल रवैया अपनाया और साफ तौर पे जवाब नहीं दिया। लेकिन ये जरूर है कि इतनी बड़ी तादाद में 5,000 से ज्यादा लोग अगर जमा हो रहे हैं आतिशबाजी के लिए, पटाखे इकट्ठा किए गए, तो आखिरकार वही प्रशासन जिसने अनुमति नहीं दी थी उसने किसी तरह का कोई एक्शन उस वक्त क्यों नहीं लिया? क्या उनको नहीं पता था कि बीच मंदिर में इस तरह के 5,000 से ज्यादा लोग तादाद में इकट्ठा हुए हैं? इस तरह की बातें हैं। हालांकि पुलिस अभी सक्रिय है, अपनी तरफ से छानबीन करने की कोशिश कर रही है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि प्रत्यक्षदर्शी से बात की जाए कि आखिरकार उसमें हुआ क्या।
रविंदर बाबा बहुत शुक्रिया, कोल्लम से आप बता रही थी इस खबर पर, जानकारी दे रही थी। अगले कार्यक्रम में आपके पास दोबारा आने की कोशिश करेंगे।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
उधर असम में आज विधानसभा चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण पूरा हो गया। 80% से अधिक मतदान होने की खबरें हैं। मतों की गिनती 19 मई को होगी, तब पता चलेगा असम में अगली सरकार किसकी बन रही है। सुनिए गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
असम में दूसरे चरण के तहत आज विधानसभा की 61 सीटों के लिए वोट डाले गए। अंतिम चरण के इस मतदान में 525 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं, इनमें से 65 सीटों पर प्रथम चरण के तहत 4 अप्रैल को मतदान हुआ था। वोट डालने आए अधिकतर मतदाताओं की जुबान पर परिवर्तन शब्द सुनने को मिल रहा था। हालांकि दूसरे चरण में निचले असम की अधिकतर सीटों पर मुसलमान मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यहां राजनीतिक दलों ने बांग्लादेशी घुसपैठ को प्रमुख मुद्दा बनाया था। अपनी जीविका के लिए गुवाहाटी में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मीनाश्री ने वोट डालने के बाद बीबीसी से कहा,
हम लोगों का अभी सेम सही है, वी वांट टू स्टे, हम लोग एक निका सरकार चाहिए, हम लोग एक प्लेन सरकार चाहिए जिसमें कि यहाँ पे हम, मैं तो गुवाहाटी में रहती हूँ, गुवाहाटी में इतना डिजिटल है, सब कुछ ये है, पानी का प्रॉब्लम है, हम लोग ये सोच के हम लोग अभी ये सरकार चेंज होने के लिए हम लोग सब तैयारी हो गया, बैंकिंग जितनी हो गया, इसीलिए सोचा कि एक नया सरकार आएगी जो सरकार में कोई भी ये नहीं होगा, अभी कोई करप्शन नहीं होगा।
केंद्रीय खेल मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही भाजपा ने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही भाजपा लोगों से परिवर्तन लाने की बात कह रही है। वहीं भगवा पार्टी ने असम को बांग्लादेशी घुसपैठियों से बचाने का भी वादा किया है। किराने की दुकान चलाने वाले विनोद मंडल कहते हैं,
मैं वोट डाला हूँ ताकि इस जो सिस्टम का पर चेंज होना मांगता हूँ, जो आज में 15 वर्ष से चल रहा है वो सिस्टम पे, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ अपना, तो चेंज होना मांगता हूँ अपना। अभी देखिए, अभी तो आगे जो अभी चला है तो अभी मैंने प्रोग्रेस दिखा नहीं दिया हम लोग का।
हालांकि कांग्रेस अकेले दम पर 122 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि निचले असम की मुसलमान बहुल सीटों पर कांग्रेस और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF का दबदबा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री और असम से राज्यसभा सांसद डॉ. मनमोहन सिंह ने भी आज गुवाहाटी पहुंचकर मतदान किया। दिसपुर के उसी मतदान केंद्र में अपना वोट डालने के बाद रजत गोस्वामी ने कहा,
असम के लिए बहुत सारा समस्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका बाढ़ आती है, फ्लड और है, प्रिजर्विंग द असम मतलब जो राइनोस, फिर हम लोग का बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, और देखिए जैसे कि गुवाहाटी का भी जो भी डेवलप बोल रहे हैं कि गुवाहाटी इज अ डेवलप्ड सिटी, बट स्टिल इट्स नॉट, 15 साल तो हमने देख लिए, क्यों ना एक बार चेंज होके देख सकते। आशा करते हैं कि जो नया सरकार आएगा तो वो करेंगे, मतलब हर बेटी आज मतलब एक बदलाव चाहते हैं।
भाजपा जहां परिवर्तन की इस लहर के साथ केवल 5 विधायकों से सीधे प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री तरुण गोगोई आसानी से 64 सीटों का आंकड़ा पार कर लेने की बात कर रहे हैं, जबकि मौलाना अजमल का दावा है कि उनके बिना राज्य में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
पश्चिम बंगाल में भी आज वोटिंग हुई है, इस खबर पर आते हैं, लेकिन पहले बात असम के तिनसुकिया की, जहां पुलिस की गोलियों की वजह से बिजली का तार गिरने की सूचना है, जिसकी चपेट में आकर कई लोग हताहत बताए जा रहे हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए तेजपुर से स्थानीय पत्रकार प्रणव कुमार दास कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रणव, आप हमें सुन पा रहे हो तो बताएं कि कैसे हुआ ये हादसा और इस हादसे में कितने लोग हताहत बताए जा रहे हैं?
जी, आज दोपहर की बात थी, ये असम की तिनसुकिया जिले की पेंगरी पुलिस स्टेशन की घटना है। उसमें करीब 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि कुछ दिनों से पहले पांच आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके वजह से उन लोगों ने 3 आदमी को एबडक्ट करने के उनके ऊपर जुर्म एलिगेशन था, जिसके वजह से ये झड़प हो गया पब्लिक और पुलिस के बीच में, पेंगरी पुलिस स्टेशन के बीच में आज घटना हुई थी। और वहाँ पे पुलिस का कहना है, यहाँ से अभी तक जानकारी दे रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी असम पुलिस IGP लॉ एंड ऑर्डर SN सिंह ने बताया गया है, क्योंकि 10 आदमी के मरने का खबर है अभी तक, वो पुष्टि किए हैं पुलिस ने, और वहाँ पे 18 लोगों को जख्मी होने का खबर है इस झड़प में। लेकिन इस टाइम में असम में दूसरी चरण के पोल भी जारी हो रही है, उसी के टाइम में पेंगरी पुलिस स्टेशन के अंदर में जो घटना घटी है, अभी थोड़ा देर पहले वहाँ पे भी जिला प्रशासन ने कर्फ्यू भी लागू किया गया है और टेंशन अभी भी जारी है वहाँ पे। लेकिन जितने इंजुरी लोग हैं उन लोगों को पांच लोगों को तिनसुकिया जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, और बाकी 13 लोगों को असम मेडिकल कॉलेज डिब्रुगढ़ में, नजदीकी डिस्ट्रिक्ट डिब्रुगढ़ में भर्ती किया जा रहे हैं। और अभी तक जानकारी ये है, क्योंकि टेंस जारी है, लेकिन 2 आदमी का सीरियस होने का खबर भी दे रहे हैं पुलिस के सूत्रों से, ये कहना है। तिनसुकिया की पेंगरी जिला के पेंगरी में जो घटना हुई थी, एक्चुअली ये एक पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प हुआ था, जिसके वजह से पुलिस ने फायरिंग किया था मोब हटाने के लिए, और ये मोब हटाने की जब कोशिश की थी उन लोगों ने, तब फायरिंग लगी, एक हाई वोल्टेज तार गिर गई और उसके तार गिरने के बाद ये घटना घटी है।
जी, ये थे तेजपुर से स्थानीय पत्रकार प्रणव कुमार, और अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं BBC बांग्ला सेवा के शुभज्योति घोष। शुभज्योति, आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए, श्रोताओं को बताएं आज किन सीटों पर मतदान हुआ, कितना मतदान हुआ, कुछ जानकारी आई है आधिकारिक तौर पर?
हाँ संदीप जी, अभी अभी इलेक्शन कमीशन ने जो बताया कि 5 बजे तक, अथवा 5 PM तक 79.51%, मतलब 79.5% मतदान हुए हैं पश्चिम बंगाल की 31 सीट में, जो पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा और बर्धमान, इन तीन डिस्ट्रिक्ट में है। ये तीन एरिया में 79.5% मतदान हुए हैं, लेकिन ये फिगर और थोड़ा बढ़ सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मतदान हुआ 6 बजे तक, 6 PM तक मतदान हो चुका है, तो इसलिए और एक घंटे में और कुछ फिगर ऐड हो सकते हैं, ये फिगर बढ़ भी सकते हैं। और ये 31 सीट में 22 सीट थे माओवादी प्रभावित एरिया में, उधर बड़ा कोई अनटॉवर्ड इंसिडेंट, बड़ा कोई झड़प ऐसा कुछ नहीं हुआ, लगभग शांति में वोट निपट गया, ये भी बताया है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज ज्यादातर, उन्होंने ये एलिगेशन किया कि उसमें रूलिंग तृणमूल कांग्रेस ने वो पॉलिटिकली उधर उनको अपोज किया, मतलब बोगस वोटिंग, ये ऐसे सारे एलिगेशन उधर से उठ के आए।
ये बताएं कि कुछ प्रमुख उम्मीदवारों के नाम जिनका भाग्य का फैसला चुनावी किस्मत आज EVM मशीनों में बंद हुई हो।
इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र था नारायणगढ़, जिसे लड़ रहे थे पश्चिम बंगाल CPM के सबसे सीनियर लीडर सूर्यकांत मिश्र, अपोजिशन लीडर भी है, और जो कांग्रेस CPM का जो अलायंस है उनका फेस अप कह सकते हैं, वो सूर्यकांत मिश्र, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की, वो लड़ रहे हैं नारायणगढ़ से, और कांग्रेस की सीनियर लीडर मनीष भुइया सबंग में वो लड़ रहे हैं। ये दो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाते हैं इस दफा के चुनाव में, जो 31 सीट है इन दोनों में सबसे ज्यादा नजर है ये सबंग और नारायणगढ़, ये दो केंद्र में। लेकिन ये दोनों केंद्र से अपोजिशन पार्टी ने ये अभियोग उठाया कि उसमें तृणमूल ने उनको ठीक ढंग से मतदान कराने में उनके बाधा पहुंचे हैं, ये एलिगेशन आ रहे हैं।
बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, ये थे BBC बांग्ला सेवा के शुभज्योति घोष।
दिन भर। शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
हर सोमवार की तरह वक्त हो चला है ये जानने का कि हमें किसने चिट्ठियां लिखी हैं और आप उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे।
आपकी राय श्रोताओं की चिट्ठियों के साथ। आज मैं हूं स्वाति बख्शी और मेरे साथ हैं,
नमस्कार, मैं हूं राजेश प्रियदर्शी।
सबसे पहले मैं एक पोस्टकार्ड उठा रही हूं और ये लिखा है संपत सिंह ने दीदावली डींग भरतपुर राजस्थान से। 5 अप्रैल को इन्होंने ये पत्र लिखा है और ये कहते हैं कि अभी अभी नमस्कार, भारत में रियाज मसरूर साहब की कश्मीर में फौज के जरिए आम नागरिकों पर ज्यादती की रिपोर्ट सुनी जिसमें कोई शख्स फौज को जर्मनी की फौज से बदतर बता रहा था। रिपोर्ट में बेरोजगारी का आंकड़ा 6 लाख नौजवानों का बताया गया है। उत्तरी भारत के दूसरे प्रांतों का हमारा अनुभव यह है कि यहां नौजवान फौज की की तैयारी में सुबह शाम सड़कों पर दौड़ लगाते हैं क्योंकि खेल के मैदान नहीं है और रेलों की छतों पर हजारों की तादाद में अपनी जान की परवाह न करते हुए भर्ती के मेलों में आते हैं और निराश वापस लौटते हैं। रियाज साहब को पाकिस्तान के हालात हमसे बेहतर पता है, फिर कश्मीरी युवकों को कहां जाने की सलाह देंगे। मेरी उनको एक नेक सलाह है, वो बांग्लादेश की तरह करोड़ों कश्मीरी बहनों भाइयों को लेकर स्थानीय नागरिकता के लिए या स्थायी नागरिकता के लिए राजस्थान आ जाएं, बदले में हम कश्मीर की तकलीफों में स्थायी तौर पर रह लेंगे। मियां, जब इसी फौज ने बाढ़ के हालात से बेशकीमती जाने बचाई थी तब आपने फौज की दखलंदाजी पे एतराज नहीं जताया। दुनिया भर में बेकसूर विस्थापितों पर क्या गुजर रही है वह भी क्या आपसे छिपा है? लाखों करोड़ों रुपए की अनुदान राशि क्या हजम नहीं हो रही है? बेरोजगारी और गुर्बत से लड़ने में बाकी भारत के नौजवानों के साथ मिलकर सरकारों से लड़ने में हमारा साथ दो और ये एहसान फरामोशी पत्रकारिता छोड़ो। मुझे लगा कि इस पत्र को पूरा पढ़ना जरूरी है।
जी, ये एक बहुत ही जटिल एक ऐसा विवाद, एक ऐसी बहस है जिसके बहुत सारे पक्ष हैं और ये है कि पुलिस का और जो सुरक्षाकर्मी हैं उनका अपना एक पक्ष है। इस सब बहस में हर तरह की आवाज़ लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। कश्मीर में लोग जो कह रहे थे वो भी हमने आप तक पहुंचाया और आपने जो ये हमें पोस्ट कार्ड लिख भेजा है संपत सिंह जी, हम भी ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि जो आवाज़ें आप तक पहुंचती हैं उस पर आप टीका टिप्पणी करें, बहस करें और तथ्यों को अपने अपने ढंग से समझने की कोशिश करें।
केशव कुमार का ईमेल है गैंगटॉक से, लिखते हैं कि बीबीसी हिंदी के प्रोग्राम में आजकल अक्सर आलोचनात्मक लहजे में इस बात को याद दिलाया जाता है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठजोड़ करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। कुछ हद तक आपकी बात से सहमत हुआ जा सकता है क्योंकि दोनों नदी के दो किनारे हैं, लेकिन वाम दल और कांग्रेस की आप लोग गलती से भी कभी चर्चा नहीं करते हैं कि उनका संबंध केरल एवं पश्चिम बंगाल में कैसा है। इसे अगर बीबीसी हिंदी की दोहरी नीति ना कहा जाए तो आप ही बताइए क्या कहें।
बिल्कुल दोहरी नीति नहीं कहना चाहिए मेरी नज़र में, वो इसलिए कि जब कांग्रेस के बारे में खबर होगी यानी कि जब ये गठबंधन पीडीपी और बीजेपी का है तो हम उसी की चर्चा करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस जब इस तरह का गठबंधन करेगी तब हम इस तरह के सवाल जो आप उठा रहे हैं वो ज़रूर उठाएंगे, लेकिन जो मुद्दा है जाहिर है कि वो इस वक्त पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन का है और जब कांग्रेस का मुद्दा आएगा ऐसे राज्यों की चर्चा होगी जहां कांग्रेस ने अजीबोगरीब गठबंधन किए हैं या उनकी राजनीति ऐसी है जिस पर सवाल उठाए जाने चाहिए, तो हम उससे पीछे कभी नहीं हटते।
पीयूष गुप्ता अपने ईमेल में कहते हैं कि आपकी कार्यक्रम 2004 से सुन रहा हूं, एक शिकायत है कि आप अपनी रिपोर्ट्स को दोहराया ना करें किसी भी दूसरे कार्यक्रम में, और दूसरी बात यह कि भारत में आने वाले पड़ोसी देशों से रिफ्यूजियों पर एक विशेष श्रृंखला चलाई जाए, मेरा पत्र शामिल ना करें तो फर्क नहीं पड़ता, जो कहा है वो करें।
पीयूष जी, हम आपका पत्र शामिल कर रहे हैं और हम रिफ्यूजीज़ के बारे में बीच बीच में बड़ी रिपोर्ट्स करते रहे हैं, आगे भी करेंगे और आपने पत्र लिखा इसके लिए शुक्रिया। जहां तक रिपोर्टों को दोबारा सुनवाने की बात है, ये लगता है कि आप हमारे बहुत ही एक कमिटेड, एक प्रतिबद्ध श्रोता हैं और आप हमारे दोनों कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई बड़ी खबर है जो कि सुबह के पहले प्रसारण में गई है और दूसरे प्रसारण में हम उसको न बजाएँ, हम लोगों को न सुनवाएँ, तो एक अजीब सी स्थिति होगी कि उस खबर खबर को हम लोगों तक न पहुंचाएं सिर्फ इसलिए कि वो पहले एक बार बजी है। हम ये मानकर चलते हैं कि बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो हमारे दोनों कार्यक्रम नहीं सुनते।
एक और ईमेल विकास कुमार का है वेस्ट चंपारण बिहार से। इन्होंने लिखा है कि इंडिया बोल कार्यक्रम सुना जिसका विषय कश्मीर पर भाजपा की दोहरी नीति था। ये कहते हैं कि NIT में जो कुछ हुआ उससे जोड़कर देखा जाए तो ये विषय असंगत था, इन्हें ऐसा लगता है। और कहते हैं कि BBC ने मुद्दे से भटका दिया, NIT वाले मामले पर कोई फोकस नहीं था कि वहाँ पर क्या हुआ और क्यों हुआ। इनका कहना है कि मेरी गुजारिश है कि कृपया अपना परसेप्शन बदलें।
हमारा परसेप्शन इस बात पर निर्भर करता है कि हमें अलग अलग स्रोतों से अलग अलग कोणों से जिस वक्त हम प्रसारण कर रहे हैं उस वक्त क्या जानकारी मिल रही है। हमारे परसेप्शन के बारे में एक बात ज़रूर है कि वो पूरी तरह से खुला है और हम जिस तरह से आपकी चिट्ठी प्रसारित कर रहे हैं उसी तरह से अगर हमें सभी पक्षों के विचार जिस समय हम कार्यक्रम बना रहे हैं उस समय मिलते हैं तो हम ज़रूर एक संतुलित तरीके से उसका प्रसारण करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरे ख्याल से अब वक्त हो गया है आपकी चिट्ठियों के कार्यक्रम को यहीं समेटने का। आपकी राय के साथ स्वाति बख्शी को और मुझे राजेश प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए, लेकिन उसके पहले
बता देती हूँ आप लोग अगर चिट्ठी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं BBC हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 3035 नई दिल्ली 110003 और अगर ईमेल लिखना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
जैसा कि आप जानते हैं क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले को IPL की कमेंट्री टीम से हटा दिया गया है। इससे नुकसान किसका हुआ, हर्षा भोगले का या क्रिकेट का, ये खबर BBC हिंदी के पहले पन्ने पर आप पढ़ सकते हैं विस्तार से। और खेल की बाकी खबरों के लिए आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं।
जी संदीप, अगर बात की जाए IPL में आज होने वाले मुकाबले की तो IPL 9 में आज गुजरात लायंस का सामना किंग्स इलेवन पंजाब से होगा और थोड़ी देर पहले गुजरात लायंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। गुजरात लायंस इस सीज़न की नई टीम है लेकिन अगर उस टीम के चेहरों की बात की जाए तो वो सभी जाने पहचाने और पुराने हैं। उसके कप्तान सुरेश रैना हैं, रविंद्र जडेजा जो कि बहुत ही उपयोगी ऑलराउंडर हैं, उन पर काफ़ी नजरें रहेंगी कि वो आज किस तरह की गेंदबाजी कर पाते हैं। जेम्स वॉकनर बहुत ही किफ़ायती गेंदबाज माने जाते हैं। ईशान किशन जो कि पिछले दिनों U19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान थे, वो किस तरह का प्रदर्शन इस IPL में करते हैं उन पर भी नज़रें रहेंगी। आरोन फिंच बहुत ही धुआंधार शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं और ब्रेंडन मैकुलम जो कि बहुत ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने दम पर ही किसी मैच को जिता सकते हैं। इसके अलावा दिनेश कार्तिक। दूसरी तरफ अगर किंग्स इलेवन पंजाब की बात की जाए तो मुरली विजय, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड मिलर और रिद्धिमान साहा ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर अब नज़र रहेगी कि वो किंग्स इलेवन स्कोर को कहां तक पहुंचा पाते हैं। और इस टीम के जो मेंटोर हैं वीरेंद्र सहवाग, अब वो IPL से रिटायर हो चुके हैं लेकिन इस भूमिका में भी वो कितने कामयाब होंगे ये भी देखना पड़ेगा। उधर अगर टेनिस की बात की जाए तो मोंटे कार्लो मास्टर टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर के मुकाबले में आज पुरुष एकल वर्ग में फ्रांस के गेल मॉनफिल्स ने लक्समबर्ग के गिल्स मुलर को 7-5, 6-0 से, बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने सर्बिया के फिलिप क्रेसिनोविच को 6-3, 6-2 से, फ्रांस के रिचर्ड गैस्के ने स्पेन के निकोलस अल्मार्गो को 6-4, 6-0 से बांध दी। उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर कल से सिंगापुर ओपन शुरू होने जा रहा है जिसमें मुख्य दौर के मुकाबले बुधवार को खेले जाएंगे। कल क्वालिफायर मुकाबलों में पुरुष एकल वर्ग में भारत के RMV गुरुसाईदत्त मलेशिया के जुल्फैदी जुल्फिकली का सामना करेंगे और इनके अलावा BSAI प्रणीत इंडोनेशिया के बिवेवो खो हेनरिको से पार पाने की कोशिश करेंगे। साइना नेहवाल को इस टूर्नामेंट में चौथी वरीयता दी गई है, वो बुधवार से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त से खेल समाचारों के बाद। कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
BBC समाचार। असम में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 61 सीटों पर वोट डाले गए। बारपेटा में CRPF और स्थानीय लोगों के बीच पत्थरबाजी और लाठीचार्ज में एक की मौत और 3 घायल। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 31 सीटों पर आज शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ।
असम के तिनसुकिया में हाई वोल्टेज तार गिरने से विरोध प्रदर्शन कर रहे 11 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हुए हैं। पुलिस की फायरिंग से गिरी थी हाई वोल्टेज तार। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के उजग रोड मेडिकल कॉलेज में 3 भारतीय छात्रों पर हमला किया गया। मंत्रालय के मुताबिक हमले में 2 भारतीय छात्रों की मौत हो गई है और 1 घायल है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक 1 महिला सहित 3 लोग हिरासत में।
दिन भर में इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे राजेश चौहान। ठीक 1.5 घंटे के बाद घटना चक्र में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।